हो सके। कृष्ण इज इन हिज समय, डोंट डिले, एट वंस यू शुड मीट हिम, ही इज वेटिंग फॉर यू। सो सो मेनी थिंग्स आर हियर, वेरी ब्यूटिफुल। बहुत एक ये सुंदर गीत है जयदेव जी का, गीत गोविंद का पद है। इसमें कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं धीर समीर में, बंसी बट के निकट, जहां पर रासलीला में पवन भी स्थिर हो गया। जल्दी सखी करो, देरी मत करो, नहीं तो दूसरे पक्ष की गोपियां आ जाएंगी, इसलिए जल्दी से करो। जानवा जानवा कमा, उसकी शतकोटी गोपी, ओ शतकोटी गोपी,
ये Thank you.
किशोरी महान ऑस्ट्रेलियन सूर महामंत्र
wants to keep his own business, any speciality.
Namo Vishnu Padayo Krishna Prasadayo Bhutale Jivate Bhakti Vedanta Sami Iti Nami Ve Gauravani Prachari Kiri
श्री सचिदानंद गौर हरि की, श्री गिरिराज महाराज की, ओम विष्णुपाद अश्रुत सदस्य श्रीमान भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की, ओम विष्णुपाद अश्रुत सदस्य श्रीमान भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रुत सदस्य श्रीमान भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रुत सदस्य श्रीमान भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रुत सदस्य श्रीमान भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर की, श्री श्रोतास बाबाजी महाराज जी की, श्री सच्चिदानंद उत्तमो ठाकुर की, श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी की, रूपानुगाचार्य गुरुवर्य की, हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कटी वैष्णव वृंद की, समागत भक्त वृंद की, गौर ब्रह्मानंद
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदत्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय अङ्गश्यामलिं सदा मन्दे कृतं वृन्दारञ्जननाशिनं हृदिरसत्कामाशिरामोदनं राधास्कन्दनिवेशितै श्री श्री माधुर्य कादंबिनी द्वितीय अमृत दृष्टि माधुर्य कादंबिनी में ग्रंथकार कहते हैं इसमें द्वैत और अद्वैत विषयों का वाद विवाद खंडन मंडन का अवकाश नहीं है। कोई व्यक्ति यदि इस सब का विचार जानना चाहे तो उन्होंने ऐश्वर्य कदम्बिनी नामक ग्रंथ लिखा है, उसको देखिए। इससे मालूम होता है कि ऐश्वर्य कदम्बिनी जो उन्होंने लिखा था किंतु पता नहीं उसकी कोई भी प्रतिलिपि नहीं मिलती है, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता है। बलदेव विद्याभूषण ने भी एक ऐश्वर्य कादम्बिनी ग्रंथ लिखा है किंतु वो दूसरे प्रकार का है, इनका नहीं है। अब बतला रहे हैं, पहली दृष्टि में बतलाया भक्ति भगवान की भांति स्वयं प्रकाश है, भक्ति स्वयं प्रकाश भक्त्या संजायता भक्त्या। मध्यम अधिकारी भक्तों के हृदय से उनके संग से उनकी वाणी से भक्ति होती है किंतु उनके हृदय में रहने वाली भक्ति के द्वार से ही उनके ऊपर में कृपा होती है, उनके हृदय में कृपा उत्पन्न होती है और उस कृपा के कारण उनको भक्ति उनके हृदय में प्रवेश कराते हैं। इस तरह से वर्णन किया गया, बिना भक्ति के कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या कोई भी फल नहीं देते। भक्ति के कृपा से ही ये लोग भक्त ये अपने फल देने में समर्थ हैं। ग्रंथकार और चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस ग्रंथ की प्रथम दृष्टि में विविध प्रकार के अकाट्य युक्तियों, तर्कों और शास्त्र प्रमाणों के द्वारा भक्ति की स्वतंत्रता, स्वप्रकाशिता यही सकल के प्रतिपादन करें। एखन द्वितीय अमृत दृष्टि के साधक साधन भक्ति के क्रम विकास का वर्णन कर रहे हैं, उनके स्तरों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम साधक भक्तों के चित्त में भक्ति कल्पलता के आविर्भाव, उसके गुण और जाति का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार मध्यम भक्तगण साधक भक्त हृदय के कृष्ण सेवा वासना उत्पन्न करे, अकीर्तादे लौकिकी व परमार्थिकी वैधि भक्ति अथवा रगानुगा श्रद्धा उत्पन्न है, यही सब गुली प्रकार भेद एवं करे आर्जितार स्तर अच्छे यही सब गुली के वर्णन कर रहे। जखन साधक निखिल कृष्णेतर वासना कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति छाड़ा आ कोनो रकम हृदय मध्य वासना थाकबे ना, गंध थाकबे ना, आप कर्म ज्ञान आदि द्वारा अमिश्रित अनाच्छादित शुद्ध भक्ति को शुद्धा भक्ति या उत्तमा भक्ति कहते हैं, बतलाया है श्रील रूप गोस्वामी। यहां भक्ति तत्व को भक्ति तत्व के सरल सहज भावे के शुद्धा भक्ति के कल्प लता उपमा दिया हुई है। चैतन्य चरितामृत रूप गोस्वामी और महाप्रभु संवादे थे एक भक्ति कल्पलता बोला, जिस प्रकार कल्पलता उर्वर क्षेत्र में पैदा हो, जे खाने से नाना प्रकार घास अन्य सब आते से खाने कल्पलता उत्पन्न हो गए ना, वही रकम है जे हृदय के कामना वासना यही सब भरपूर अथवा यमन की गंधो थक ले भक्ति उत्पन्न हो। निष्काम एवं उर्वर क्षेत्र में एटी उत्पन्न है। एखादे प्रश्न होते पड़े, बीज के बिना कभी लता पैदा होती नहीं, इसलिए भक्ति लता का बीज क्या है? लता क्रीपर का बीज होता है, बीज है भक्ति लता बीज की। ब्रह्मांड भरमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता माली भैया से ही बीज करे आरोपण, सौन कीर्तन जले करे सूच। कृष्ण बहिर्मुख जी अपने कर्म के फल से अनादि काल से जब से सृष्टि आरंभ हुई, जखन तक सृष्टि आरंभ हुई छे नाना प्रकारे जोनिते भ्रमण हो, कखनो देवता कखनो गंधर्व कखनो शूकर कखनो कुकर कखनो कोचित नाना रकम आज खोजे कि आनंद सुख, किंतु कोनो जन्मेते सुख शांति आनंद प्राप्ति होच्छे। एखन मनुष्य जन्म भगवान अनुग्रह कर दिए छे,
যখন মহৎ কৃপাজনিত সৌভাগ্য যদি প্রাপ্ত হয়, যখন মহৎ ব্যক্তি যার হৃদয়তে ভক্তি আছে আর জগতে জীবের দুঃখ দেখেন, তখন চিত্ত স্রবিত হয়ে যায়, তখন তাহাদের দ্বারে দ্বারেতে গিয়ে প্রতি জীবের নিকটেতে গিয়ে আর তাহাদেরকে কৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করবার, উন্মুখ করবার চেষ্টা কর, তারা বড় দয়াল। আমি গুরু মহারাজকে দেখেছি কি রকম ভাবতে মেদিনীপুর চব্বিশ পরগনা দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন, এক জোড়া জুতা ওইখানে তাহার শেষ হয়ে যেত, কোনদিন চলাফেরা করতেন না, আর এইরকম হতে মাঠে 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 ঘুরে
মেদিনীপুরের মাঠে তিন জোড়া জুতো খাতে।
তো এইরকম দেখা যায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ নগর সংকীর্তন করে, যেখানে নিজে যেতে পারেন নাই তাঁর সেবকগণকে পাঠিয়ে দিয়ে, সর্বত্র এই কৃষ্ণ সেবার বাসনা জগতের জীবের হৃদয়তে তিনি, এই হচ্ছে ভক্তিলতার বীজ। মহাপ্রভু ভক্তিলতাকে বীজ কা উল্লেখ তো কিয়া, কিন্তু ও বীজ ক্যা হ্যাপষ্ট রূপ সে নেই বতলায়া, জীব গোস্বামী নে বতলায়া, ভবাপ বর্গ ভ্রমত জগা। যখন জীব জগতে ভ্রমণ করতে করতে চৌরাশি লাখ যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে ইত্যাদি, তার টিকাতে বলছেন কি, সৎসঙ্গমে রতি অঙ্কুর উপায় মতির জায়তে, ইতি সাধু সঙ্গতে রতির অঙ্কুর স্বরূপ মতি উৎপন্ন হয়, এই হচ্ছে কৃষ্ণ সেবার বাসনা। এই জন্য মহৎ পুরুষ কি হস্তি কৃপা সে মহৎ মহৎ জনগণ মধ্যম অধিকারী, এখানে ওইটা বুঝা রাখ, উত্তম অধিকারীও হয় তো মধ্যম অধিকারীতে এসে তারপরে ভক্ত জীবের উপরে সে কৃপা করতে পারে। সাধু কি চিত্ত মে জিস মতিকে দ্বারা ভগবত ভজন কি অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবা কি বাসনা উৎপন্ন করে, উসি কো ভক্তি কল্পলতা কা বীজ কাহে, সেই হচ্ছে ভক্তি কল্পলতা প্রথম অঙ্কু। এই কৃষ্ণ বাসনা যে সেবা এটা বাহির লক্ষণ কি, হরি গুরু বৈষ্ণব বাক্যেতে শাস্ত্রে বাক্যেতে সত্তা দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্বভাগ, কৃষ্ণ কি ভক্তি করলে সে সব কিছু হয়ে যায়গা, আর সব কিছু কি আর ভক্তি নেই হওয়া তো কিছু নেই। সাধকোকে ইন্দ্রিয় রূপী ক্ষেত্র মে শ্রবণ কীর্তন জল সিঞ্চিত হোনে পর উসি বিষে ভক্তি লজা উৎপন্ন, কিসে মধ্যমতিকারী ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তারা পাঠ করে, লোক শুনে আর শুনে চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে যায়, তখন আমি হরিনাম গ্রহণ করব, আমি কৃষ্ণের ভক্তি করব, কৃষ্ণের সেবা করব, এই বীজটাও গুরুত্ব হয়ে যায়। কৃষ্ণ বিষয়ে আনুকূল্য সম্পাদনই ভক্তি কল্পলতা কা মিন্দ, কৃষ্ণ বিষয়ে আনুকূল্য কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল যে আছে যত কিছু অনুকূল ওই সম্পাদক আজ বৃদ্ধ আছে তাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাগ কর, এইটি সংকল্প হবে, অর্থাৎ কৃষ্ণের আনুকূল্যময়ী সেবা, তাহার সুখ অথবা তাহার প্রীতি আনন্দ বিধানী ভক্তি প্রাণ। কৃষ্ণ কিসে সুখী হবেন? এই মমতা যুক্ত সেবার প্রবৃত্তি, এইটাকে ভক্তির প্রাণ হচ্ছে। জিজ্ঞস্বামী ভক্ত ভগবত সন্দর্ভ মে প্রীতি সন্দর্ভ মে প্রীতি কে লক্ষণ মে লিখা হ্যাঁ বিষয় রূপ অনুকূল্য ইয়া সুখ বিষাণ জিসকি আত্মা ইয়া জীবন। বিষয় হচ্ছেন প্রেমের বিষয় কৃষ্ণ, তার সুখ তার আনুকূল্য কিরকম কৃষ্ণের সুখ হবে, এইটা হচ্ছে ভক্তির প্রাণ। ওই স্পৃহা কারণ অনুভব হইলে জিসমে উল্লাসময় জ্ঞান বিশেষ, উসমে কৃষ্ণ সেবা করকে উসকে হৃদয় মে উল্লাস হতা হ্যায়। জয়াত্মা কৃষ্ণ কা কোই ভজন করে আর ও সুখী না রহে এসা নেই হো সকে, উসি কে দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হতি হ্যায়। চাহে লাখ সংসার কা দুঃখ আয়ে উসকো স্পর্শ নেই কর সকতা, और कोई कामना उत्पन्न नहीं करने देगा। तात्पर्य यह है कि प्रेम को आविर्भूत कराने वाली शुद्ध भक्ति की तीन भूमिकाएं हैं। पहला, भक्ति के विषय में कृष्ण को जिससे सुख होता है वही भक्ति का जीवन प्राण है। नंबर एक, अर्थात भक्त के हृदय में कृष्ण की सेवा या सुख साधन का अतिरिक्त और कोई वासना नहीं हो सकती। प्रश्न हो सकता है, भक्त भगवान को पाने के लिए क्यों कामना करता है? अपने सुख के लिए नहीं, सत्संग के द्वारा अपना सुख इत्यादि ये सब कुछ वो दूर हो जाता है, केवल कृष्ण को सुख हो इसी के लिए। दूसरी भूमिका की बात करें, कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को सुखी बनाने के लिए गोपियां श्रृंगार करती हैं, किसके लिए करती हैं? कृष्ण के लिए श्रृंगार करती। इसलिए भक्तों में ये इच्छा उत्पन्न होती है कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को ही सुखी करें, मैं सुखी हूं भक्ति बिगड़ गई, इसलिए अपने सुख की कोई कामना नहीं करते। और यदि कोई कामना नहीं होती तो वो सुख नहीं पा सकते, ऐसा होने से भक्ति की पुरुषार्थता नहीं रहती, क्योंकि सुख या आनंद ही पुरुषार्थ है। इसके लिए तीसरी कह रहे हैं, तीसरी भूमिका की बात करें, भक्तों को अपने लिए सुख की कामना नहीं होने पर भी यद्यपि भक्त को अपने सुख की कामना नहीं होती, निजे सुखर कामना हो ना, किंतु कृष्ण की सेवा ही ऐसी है कि कृष्ण का माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, उनकी सेवा कर अनुभव करके अपने आप आनंद होता है। कृष्ण को देख करके गोपियों का आनंद होता है और गोपियों को देख करके कृष्ण को आनंद है, इस तरह से परस्पर हुड़ाहुड़ी चलती है, परस्पर टक्कर चलता है, कोई भी नीचे हारने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। ट्रांसलेशन,
therefore Sri Vishnu Chakravarti Thakur says in his book Srimad Vaidhika Ramayana, there is no question of simply dry out even in logic to understand what is great about or great about. In order to simply understand one one, we are reading this Madhurya Karambini. So there is another book by Aishwarya Karambini that is written by Sri Baladev Nidhibhushan or by Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur, but there is no copy available. Therefore, we have established that Bhakti, like Bhagavan himself, is independent and self-illuminating. Bhakti, she is achieved by the association of the Madhyam Adhikara Vaishnava, Bhakti Sanjatya Bhakti. Therefore, Bhakti, which is present in the heart of the Madhyam Adhikari, is transferred by his mercy to the heart of the disciple or the sadhak. Therefore, Bhakti depends upon herself. We have discussed how without the mercy of Bhakti Devi, the inferior parts like karma, jnana or yoga cannot reveal a result independently. Therefore, Bhakti is samatha. She is capable of giving any result to anyone. Therefore, in the first section of Madhurya Karambini, the writer of the book Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur has used logic and arguments from Shastra to prove the self, the independent nature of Bhakti. And now in the second part of Madhurya Karambini, there is discussion of Sadhan Bhakti. Therefore the sadhak, by taking association of the Madhyam Adhikara, by hearing Hari Katha, Bhakti appears in the heart of the devotee. That bhakti, that first route is called Krishna Seva Vasana, the desire to serve Krishna. That Shraddha or Krishna Seva Vasana is of two types, Vaidhi Bhakti or Radhanu, or Vaidhi Shraddha or Radhanu Shraddha. Therefore, the definition of bhakti has been given by Sri Rupa Goswami. Anyadilasita sanyam jnana karmali anamitam anupalena krishnanam shiranam bhakti uttama. Pure bhakti has the symptoms that there will be no other desire except the desire to give happiness to Krishna, and bhakti will not be covered by karma or jnana. Therefore, Sudha Bhakti, she is like compared to a kalpalata, a wish fulfilling vine. This has been discussed in Sikhanda Chaitanya by the discussion between Sri Mahaprabhu and Sri Rupa Goswami. But as long as there is some other desire in the heart, then Bhakti Devi cannot sprout. Other desires are compared to be like weeds or grass. Therefore Bhakti is niskam. Her nature is to have no other desire except to please Krishna. Therefore she sprouts in the heart. Without the seed, how there can be a plant, a kalpalata? Therefore, what is that seed of devotion? It is said in Chaitanya Charitamrita, Brahmande Brahmanikona Bhagavanaji, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach, Mali Moi Se Beach, Koriya Rupan, Shravana Kitana Jara Koriya Se Chan. There are unlimited numbers of jivas in this world who are against Krishna. And since time immemorial, since before the beginning of creation even, the jivatma, the individual soul, out of bewilderment of maya, is moving through 8,400,000 species of life. Sometimes it becomes a demigod, a gadabra, a dog, a hog, a worm. But as he is moving, he is looking for one thing, happiness, but he cannot find. Out of mercy, Krishna gives that jivatma the human form of life. And if by good fortune, that jivatma can receive Mahatsanga, the association of the pure devotees of the Lord. And by that Mahatsanga, the jivatma receives devotion. Therefore that Mahapurush, the sadhu, they see the suffering of the jivas in this world and their heart melts. Therefore they move door to door, preaching the message of Krishna. he tries very hard to attract the jivas to the service of the Lord. Like Guruji said, like Adam Gurudev. How Gurudev said, I personally saw him, he would move door to door, maybe all that area of Bengal, walking, even three pairs of shoes, he completely finished. So much hard work he did. There were our Prabhupada, see Saraswati Thakur. And our Thakur said, Bhaktivinoda, such hard endeavor they did to preach in performing Nam Sankirtan. And if they could not go personally, then they inspired their devotees, their servants, their devotees to go out and preach this Krishna Seva Vasana, all should serve Krishna. Therefore, Sri Jiva Goswami has given some commentary on the Bhagavatam verse, Bhavava Bhagavad Brahmatorya Topavet. He says, the living entity moving through 8,400,000 species of life, they may receive satsanga. In that satsanga, the sprout of rati, or attraction to Krishna, will come in the heart. That sprout is received. Rati Akurmati means the intelligence to serve Krishna, or to be attached to Krishna. That intelligence comes by the mercy of the Madhyam Arika Vaishnav. For that Uttam Vaishnav who comes down to the platform of Madhyam Arika, it is that Vaishnav which inculcates Shraddha in the hearts of all the jivas. Therefore that seed is the desire to serve Krishna. And that plant that grows is called Bhakti Lata. That Shraddha, that first stage of devotion, is externally seen as a fixed faith in the words of Sri Hari, Sri Guru and the Vaishnavas. And also externally is seen Krishna Bhakti Koya, Sava Kam Krita Hoy. Externally will be seen as a determination, I will only serve Krishna. I only have to serve, satisfy Him. I do not have to satisfy anyone or anything else in this world. Therefore the sadhak and the influence of Bhakti Devi engages his external senses in the process of Shravan, Kirtan, Vishnu, Smaranam. Therefore our Guru Bhargava, our Guru Parampara have taken the message of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita to every city, to every town and to every village. And by hearing these lectures people have become inspired. Yes, I must serve Krishna. I must give him happiness. That Shraddha will give a result also, externally seen. Anukunyasya sankalpa pratikunyasya vajanam. A fixed determination, a very, very strong desire to accept that which is favorable and to very strongly reject that which is unfavorable to the cultivation of devotion. That Krishna Seva Vasana culminates in one thing. How I can make Krishna happy. Therefore the life, the prana of devotion is that mood. How I can make Krishna happy. And that bhakti is to be seen as Mamata Gupta, endowed with complete feeling of possessiveness towards Krishna and affection. Everything has its symptoms. Therefore that symptom will be, I must give happiness to Prem Visaya Krishna, who is the enjoyer of bhakti. Therefore that bhakti will come in the mind as ulasmoy jnana, knowledge which is full of an eagerness and enthusiasm to serve Krishna and give him happiness. If we see someone, I am doing bhajan so much but I am very unhappy, this is completely absurd. It's impossible. Unhappiness cannot touch someone who is engaged in bhakti. Therefore some questions now come. Is Bhagavan selfish to engage the jivas in his own service? Is the devotee selfish? Because they desire to escape from unhappiness, therefore some doubt comes. Therefore the devotee, the sadhak never desires to escape from unhappiness because unhappiness automatically runs away in the association of sadhus. Therefore, there is no separate endeavor for the removal of unhappiness. Also, the devotees, especially the gopis, have no desire for their own happiness. When it's seen that there is some attachment to their own bodies or their own happiness, that is really only for the happiness of Krishna. therefore the gopis, Adeva Gopi Gana, Nikramananda, Krishna Subhilagamanda, Krishna Sekhsananda, the gopis, the attachment and the endeavors they perform for their own happiness is actually only for the happiness of Krishna. Therefore, will I try for my own happiness as well as Krishna's happiness? No. One should only try for Krishna's happiness, and all type of happiness runs behind that person. You cannot avoid, you cannot be the devotee to be unhappy, because all happiness will automatically come. Therefore, Krishna is not selfish. When Krishna sees the happiness of the gopis in his seva, then Krishna becomes even more happy. When the gopis see Krishna's happiness, they become even more happy. Therefore, it's like a competition of unselfishness.
अब बहुत ही गंभीर तत्व आ रहा है, अगर खूब गंभीर तत्व आ रहा है, जिस प्रकार मधुकर भ्रमर पुष्पाय मकरंद पान करने के लिए लता का आश्रय करता है,
शेष प्रकार
कृष्ण सेवा अतिरिक्त समस्त प्रकार की कामनाओं वासनाओं से रहित होकर भक्ति भक्त रूप मधुकर प्रेम मकरंद का आस्वादन करिवार जन्य सदैव भक्ति कल्पलता का आश्रय। यहीं पर प्रश्न होता है, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, सच्चिदानंद में ही है, वह किस प्रकार साधकों के प्राकृत इंद्रियों में आविर्भूत होगी, जड़ और अप्राकृत चेतन में भेद है, चेतन जड़ नहीं हो सकता और जड़ चेतन नहीं होगा, ये बात ठीक है। फिर भक्ति स्वरूप शक्ति सच्चिदानंदमयी और जीव का शरीर जड़ है, इसमें कैसे प्रकट होती है? उसके उत्तर में चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जैसे स्पर्शमणि लोहे को स्पर्श करते ही क्या बना देती है? स्वर्ण बना देती है। कैसे बन गया? स्पर्शमणि की विशेषता है, अपनी शक्ति से संचरित होकर लौहत्व को दूर कर और उसको स्वर्ण बना देती है। उसी प्रकार भक्ति भी अपने चिन्मय स्पर्श से साधकों के जड़ इंद्रियों को क्रमशः स्वर्ण की भांति परम विशुद्ध चिन्ह में किया करती। भक्ति देवी जीव हृदय के जीव इंद्रिय से प्रकटित है, अतः कृष्णामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखो ही जीववादो स्वयं एव स्फुरत तदा। कृष्ण नाम आदि श्रवण कीर्तन इत्यादि चिन्मय सेवनमुख वृत्ति हुए यदि केव नाम करे ताले वही चिन्मय श्रवण कीर्तन तार हृदय से आविर्भूत इंद्रिय से, अर्थात गुरुपादाश्रय एवं तत्पश्चात दीक्षा और भजन क्रिया के साथ में अनर्थ दूर होने लगता है। सत्य सत्य जो चाहते हैं उनका, इसके लिए जो साधन करते हैं शुद्ध रूप में, जरा शुद्ध शुद्ध साधन करें ताजे, और जरा साधन करें ना उधर विषय तेन तखन साधक के जड़ इंद्रिय थे भक्ति की अलौकिक प्रक्रिया सूत्रपात होता है, तखन क्रिया आरंभ है भक्ति, जैसे जैसे श्रवण कीर्तन करता जाएगा अनुष्ठान, ततो ततो भगवान की भांति सच्चिदानंदमय स्वप्रकाश तो भक्ति साधकों के जड़ी हृदय में प्राविर्भूत होकर के ज्वलंत आग में लोहे की टुकड़े की भांति तदात्म होकर चिन्मय बना दे। कृष्ण भक्ति बृहद भगवतामृत में कह रहे हैं क्या, रति के स्तर पर जब साधक पहुंचता है भाव अवस्था में, रति की अवस्था में साधकों का मन बुद्धि अंतर इंद्रिय प्रेम के स्तर में यथावस्थित पांच भौतिक देह क्रमशः दूर होकर के चिन्मय शरीर प्रकट होता है। कृष्ण भक्ति सुधा पान देह दैहिक विस्मिते तेषां भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता, अर्थात कृष्ण भक्ति रूप अमृत का पान करके जो लोग देह और दैहिक सब कुछ भूल गए हैं उनका पांच भौतिक शरीर क्रमशः दूर हो जाता है और सच्चिदानंदमय शरीर प्रकट हो जाता है। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कपुना अपराकृत देह देह कृष्ण भक्ते चिदानंदमय दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण सही देह तार करे चिदानंदमय अपराकृत देह तार चरण एखन तो विचार हलो किंतु गुरु महाराज मुखे थे अनेक विचार विषय ते सुना हुए छे हमें बोले ए संबंधे जीवे एक स्वरूपानुबंधी परम सुंदर चिन्मय देह आज सच्चिदानंदमय ताले ए शरीर जे दाढ़ी गोह पाका वृद्ध रोग जर्जर एर की दरकार आछे जे चिन्मय हो जाए ए चिन्मय शरीर ते कि जाबे जेते पारे ना ताले सामंजस्य की रकम होबे ए सामंजस्य करते ए शरीर चिन्मय होबे ना किंतु वैष्णव शरीर के चिन्मयी मानते हो गुरुदेव देह के चिन्मय मानते हो बोलते नारद ऋषि भजन करते 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 भगवान के दर्शन क्षण जन्म पे तार भगवान अंतर ध्यान हो गए तेनी अत्यंत व्याकुल हो गए भगवत दर्शन आकाशवाणी हो चिंता करो ना यही शरीर से आज भगवत दर्शन हो गए भजन कर समय आसले भक्ति देवी प्रबल हुए तुम्हें यही शरीर के छड़े दिए आमर धामे ते आसले तखन बोलिए नेपत पांच भक्त की तार यही शरीर यदि चिन्मय हो जो ताले ए शरीर ते चले जेते किंतु ता न अलक्षित भावे ते जखन समय आत्म भजन करते 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 एवं प्रता स्वप्रिय नाम कत्या यही स्थिति ते पहुंचे तखन समय आसले तिनी काले मस्तके ते पाए रेखे निपतत पंच भौतिकी এই পাঁচ ভৌতিক শরীর তাহার নিপতিত হল আর তাহার বদলে কি হল চিন্ময় পরম সুন্দর সচ্চিদানন্দময় তনু তাহার প্রকটিত হল আর তখন তিনি গোলোক বৃন্দাবন নারায়ণ লোকেতে সর্বত্র এই লোকেতে তিনি ভ্রমণ করবার যোগ্য। এখন কথা হচ্ছে ভক্তি হল দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ, আত্মসমর্পণ হয় দীক্ষাকালে আমাদের আমাদের দীক্ষা এটা পারমার্থিকই নয় আনুষ্ঠানিক। জৈন ধর্মেতে দিয়ে আছে জয় বিজয় আর ব্রজনাথে যখন দীক্ষা হলো একেবারে মুচ্ছিত হয়ে গেল। আর দেখেন কি অপ্রাকৃত অবস্থা সবটি দর্শন করতে গেল। আমাদের আমাদের দীক্ষাতে আনুষ্ঠানিক ওই দীক্ষাতে পারমার্থিক দীক্ষাতে অধিকার দেওয়া হল, যখন ওটা হয়ে যাবে তখন রতি অবস্থাতে উপস্থিত হবে, তখন এই শরীরটাকে তাহাকে অপ্রাকৃত মনে করলেও গুরুদেবের খাড়াও কার, কিন্তু ব্যবহার করে তাকে অপ্রাকৃত মনে করা নচেত পরমার্থের গতি হবে না। এই জন্য হয় কি যখন তাহার কাল উপস্থিত হয় মৃত্যু, তখন অলক্ষিত ভাবে তখন এক সেকেন্ডও লাগে না, তখন কি হয় এই পঞ্চভৌতিক শরীর দূর হয়ে যায়, আর তাহার চিন্ময় স্বরূপ শুদ্ধ পরম মধুর পরম সুন্দর সর্বগুণ সম্পন্ন যাহার যে যোগ্যতা আছে যে জন্য ভজন করেছে সেই রকম কৃষ্ণ সেবা উপযোগী সে শরীর লাভ করে। এইটা সিদ্ধান্ত শ্রীল প্রভুপাদও বলেছেন, গুরু মহারাজও ভালো করে বুঝো সহজিয়ারা মনে করে এইখানে ভেদ এই শরীরটা চিন্ময়, তাহলে বুড়ো হয়ে ওখানে একটা লোক কৃষ্ণের কি সেবা করবে, বুড়ো লোক জর্জর রোগেতে জর্জরি দাড়ি গোফ নিয়ে কিরকম করবে যদি এই শরীর হয়ে যায়। এই জন্য সামঞ্জস্য করে গুরু বৈষ্ণবরা যেরকম বলেছেন ওইটা গ্রহণ করে আমরা চলব। সহজিয়ারা মনে করে সহজিয়ারা মনে কি করে এই শরীর চিহ্ন হয়ে যায় না, তখন পুরুষ লোক নাকেতে লোর পরে আর সেন্দুর লাগায় আর ওই ললিতা সখী কৈল দ্বীপে এরকম দেখা যায়, আরো আরো সব লোক দেখা যায় এই শরীরকে মনে করে যে সে এই শরীরের দ্বারা গোপী হয়ে আমি ভজন করব, এটা কখনো হতে পারে ট্রান্সলেশন
In the same way that the bee goes to the flower and says, Sami, in the same way the bee like Sara, who has no other desire, goes to the wish-fulfilling kripa of Prem Bhakti. He takes that Prem, then will that bee like Sara take shelter of Prem Bhakti. Therefore, a question may come, that Bhakti is the Swarup Shakti of Bhagavan. She is composed of Sajidananda. But the Jivatmas in this world, the Sadhaksa, their bodies are still in error. Therefore, how they can taste the transcendental thing? Also, there is a difference between matter and consciousness. Consciousness cannot become matter, matter cannot become conscious. Therefore, then how the sadhak will taste bhakti if all these considerations are there? The sadhak has a material body which is unconscious. How he can taste bhakti which is supremely conscious? Therefore, the example is given. Atasi Krishna Navarina Bhagavad Gita Seva Kopi Nijivadra Swayamera Skutiyada. Just like there is one jewel called the Sparsamani. If you touch that to a piece of iron, then that iron becomes gold. How does it happen? It happens by the inconceivable potency of this Pashamani jewel. It dispels the iron quality in a piece of iron and then it becomes gold. In the same way, the senses of the Sarak are like iron, but when touched by the Sparsamani of Surabhakti, which is Satyananda, then the material qualities of the senses are dissipated and the senses become Tadatma with Bhakti, one with Bhakti, and they also become Satyananda Moy. Therefore, by performing Shravan and Kirtan of Krishna's name, form, qualities and pastimes, with a Buddha of Seva, Seva Mukhani Jivado, beginning with the tongue, by taking shelter of the Guru, Guru Padasray, then taking Diksha, then performing the limbs of Bhakti under the guidance of Guru, then by performing Sudha Sadhana, performing Sadhana in a pure way, without material desires, if you're not practicing Sadhana, then no question of this happening. Then, the material qualities of the senses are dissipated and the senses become Tadatmi with Bhakti and then they can taste Satchitananda Mahi Bhakti Devi. Therefore, Brihad Bhagavatam has said, discussed, at the stage of Rati, Bhava Bhakti, that time this material body consisting of earth, water, fire, air, and ether becomes chimoy, transcendentalized. By drinking amrit of bhakti, then the jivatma, the sadhak, he forgets his material conception of himself. And the satyananda moy, siddhadeha, inside the jivatma spiritual body, manifests. Imam Prasasva Priyanamukitya Jhana Raya Dhunta Chitpiyuche. This verse is discussed there. Therefore, some it may appear some confusion. My translation probably will not help that. Therefore, we are hearing Vaishnav Deha Prakriti Kabunoi. Mahaprabhu said to Sri Sanatana Goswami, the body of a Vaishnav is never to be considered material. Also, Diksha Kali, Bhakta Kali, Atmasama Param, Stay Kali, Krishna Kali, Atmasama. When we take initiation, at the time of initiation, when we completely surrender to Krishna, at that time the sadhak receives a spiritual body the same as the Lord. Therefore, that conception is given. But really, Guru Maharaj is asking about the form of the Guru. We see some old ages there, the beard is becoming white, some diseases there. Therefore, question comes. For Buddha is saying, no? But it's Sada, right? He's become Chinmoy by we just said those two verses. Then when we see old age is coming, beard is coming, grey, some diseases there, then can this body go to Goloka Vrindavan? That was the question. That is the question?
Yes.
Therefore, how we can reconcile these two things? Guru Maharaj said this body cannot become Chinmoy. This body cannot become Satchitananda. Therefore, the history is given by Narad Muni. Narad Muni, he took Diksha from his guru, he took mantra, etc. He left home, went to the forest, and was performing bhajan. At that time, Bhagavan appeared like a flash. Now, Narada, you cannot have darshan in this body of yours. When you leave this body, then you can, when you develop more, then you can have my association. Therefore, Narada did not go to Vaikuntha in that body in which he was situated. He left, it's a Bhagavatam described, that body of five elements he left, and in that Siddhadeha, Satchitananda Deha, the internal Swarup, in that body he went to Goloka Vrindavan. Therefore, the Siddha Deha goes into the spiritual world, not the body of five elements. Therefore, have we taken Diksha? Diksha Kali, Bhakta Kali, Atma Samarpan. we hear this kind of disha, we get a transcendental body. But have we really taken disha? Where is the quality of our surrender? We hear in Jaya Dharma that Vijay and Rajanath, when they took diksha from their Gurudev, immediately they became unconscious and saw Gaurani's and Anandaru dancing before them. But that did not happen to me. Therefore, we have taken understanding diksha. We say enter the school of diksha, some formal diksha was there. This formality of taking mantra from Guru, this gives the quality, the qualification for a future attainment of some spiritual wealth. Therefore, the Sahajas think, oh, this material body can become spiritual. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur described all these things in a very strong way. Therefore, the Sahajas think this body can become transcendental. Therefore, they put kajal, nose ring, say five times a day, put color in their hair and say, I become the Lalita Sakhi. But this is completely ridiculous. How a body of stone you can become the Lalita Sakhi. Therefore, we should understand that inside this body there is a very sweet, eternal siddhadeya, eternally perfected form. That form goes to Radha Krishna or wherever seva is necessary and goes there to perform seva, not this body of stone you. That's what Guru has said, I'm not doing my own anything.
Explain what you understand by diksha kale bhakta kare atma samarpan, sei kale krishna tare kare atma sam, sei dehtar kare chidanandamay aprakrit dehe krishna charan. What you understood?
So Srila Gurudev has ordered me to discuss the understanding of two slokas from Chaitanya Charitamrita, which are the topic that we have been discussing here. I'm not so familiar with these. Can you remind Diksha Kale?
Bhakta Kare Atma Samarpan.
Yes,
Diksha Kale. Sei Kale Krishna Tare Kare Atma Samarpan. Sei Deh Tare Kare Chidanandamay Aprakita Dehe Krishna Charana Bhaja.
So, Diksha Kale means at the time of Diksha. When a devotee, when a disciple receives diksha from the Guru, this is what is being referred to here. But actually, what is the definition of diksha? Diksha Kale, the time of attaining diksha. We have just heard Srila Gurudev has explained and given the example from Jaya Dharma of Rajanath and Vijay Kumar. So these two personalities, when they receive diksha from their Gurudev, immediately they have transcendental experience of their own spiritual forms and the form of their Gurudev. And as was just now explained, we, in our reception of diksha from Guru, this has not been our experience. Therefore, this is called anusthanik diksha. That it is not on the level of this transcendental diksha. What is the actual meaning of diksha? Divya jnanam tato dadya kurya papasya samshayam tata dikshayati sa prokta deshikais tatpako vidai. This verse is explaining that the word diksha consists of two syllables, di and sha. So di refers to divyam jnanam, transcendental knowledge, transcendental realization. Realization of what? Realization of my own spiritual form. Realization that My Gurudev has his eternal spiritual form, his eternal relationship with Krishna. What is my relationship with Krishna? All this type of transcendental knowledge is called Divya Jnana. And Kuryat Papasya Sanchayam. When this chain of repeated pap means sinful activities and karma, which are binding the soul, the jivatma, to this material body and to the succession of repeated births and deaths, when this is completely removed and burnt up by the performance of Shuddha Bhakti, then at that time, Diksha becomes attained. So we can say that we have been allowed entrance into the school of Diksha. But actually, Diksha is when one has completed the entire course and has attained, like his diploma, at the end of attending university. So in this way, one attains these two things, Divya Jnanam and the complete removal of all sinful activities and past karmas. So, Krishna accepts the devotee at the time of Diksha, Atma Samarpan. It describes here that Krishna is accepting the devotee equal to himself at that time of Diksha. So, that actual Diksha time, which is being referred to in this verse, is when Krishna, when the devotee has attained this level of Diksha. Then he becomes qualified actually to attain his Aprakrita Deha, his transcendental spiritual body, and to go to the spiritual world. But prior to that, he will experience Swarup Siddhi, in which he is aware, although he has not yet transferred there to the spiritual world and attained the Vastu Siddhi, taking birth in the pastimes of Krishna in this material world, but he has attained Swarup Siddhi at the stage of Rati, at the stage of Bhav, then that devotee realizes his eternal spiritual form and his and all of the qualities and designations of that eternal spiritual form, and then in that way the devotee constantly meditates upon the pastimes of Krishna, chanting his holy name, Evam Pratasva Priyana Makirtya Jatanu Ravo Durdichitka Uchaya. He is constantly absorbed in chanting the names of the Lord and remembering his pastimes, and he gradually loses even his awareness and consciousness of this material body and becomes qualified to transfer to the spiritual world.
Thank you. Oh, can you say it? What? Hindi. What? 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 संक्षेप में बोल 10 मिनट 5 मिनट इच्छा काले भक्त करे आत्म समर्पण सेई काले कृष्ण कार्य कार्य करे सेई देह तार करे सिदा अप्राकृत देह
Gurave Gaurachandraya Radhikaya Sadale Krishnaya Krishnaya Tatvataya Namo Namo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Maharaj ne darshan diya hai शिक्षा काले स्वागत है आत्मा समर्पण
काले
कृष्ण कार्य करे आत्मा सही देह करे तार सीता बनाए अपराध देह कृष्ण चरण यह चैतन्य चेता विषेदा ये कृष्णदास कल्याण गोस्वामी जी का वास्तव स्वरूप भजन स्वरूप की वर्णना कर रहे हैं जी श्री गुरुपाद कर्मों का चरण आश्रय ग्रहण करता है अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे जो दीक्षा शब्द दीक्षा दो तरह का है एक दीक्षा तो जो आनुष्ठानिक दीक्षा जिसको साधारण व्यक्ति ग्रहण करते हैं एक दीक्षा है विद्वत रूप दीक्षा जो वास्तव दीक्षा कहते हैं। अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे, दीक्षा का मतलब होता है दीपम ज्ञानम जत दद्यात् कुर्यात् पापम संस्कारम्। दीक्षा मतलब होता है जब जीव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो। अभी दिव्य ज्ञान है क्या? अभी साधारण रूप में जीव समझता है कि शरीर मैं हूँ और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। लेकिन दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं? दिव्य ज्ञान वो है जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यता। तत्व हम इस संसार का कोई वस्तु नहीं, तत्व जीव है वो कृष्ण का नित्य दास है। और नित्य दास नदी जो दिव्य ज्ञान है, अभी शिष्य का अंदर में वास्तव क्या स्वरूप है, इसलिए महाराज को बता रहे थे जब जीव को आसक्ति अवस्था होता है, जब आसक्ति अवस्था में अंकुर जीव का अंदर में जो स्वरूप है, जो उसका सिद्ध स्वरूप है, किसी सख्य रूप में हो, वात्सल्य रूप में हो, श्रृंगार रस में हो, उसका किसी अवस्था में प्रकट होता है, तब वो अंकुर केवल आसक्ति अवस्था में वो अंकुर होता है। फिर धीरे धीरे आसक्ति को आत्मभाव भावावस्था में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बात बताए वहां पर कभी कभी भगवत प्रेम का कली अवस्था भाव है, हम लोग श्रवण करेंगे। हाँ, कली अवस्था में उसी समय साधक कभी भगवान की चरण की मुकुर की झलकार को सुनता है, कभी भगवान की बंसुरी की सुंदर सुंदर आवाज सुनने को मिलता है, कभी कभी भगवान जब उसको स्पर्श करते हैं उसका शरीर कभी कभी रोमांचित हो जाता है, कभी कभी वो अपना ओठ भी लेकर चाटने लगता है, मानो भगवान उसको कुछ अमृत पिला करके गए, कभी उनका वस्त्र की दिव्य छटाए, उनका आभूषण की छटाए और भगवान का शरीर का जो दिव्य प्रकाश कभी कभी उसको दिखाई पड़ता है, ये भावावस्था में। लेकिन जो प्रेमावस्था में कहते प्रेमावस्था में ही संपूर्ण उसको दर्शन है, जो जिस रस की उपासना करता है उसी रस का अनुरूप प्रभु उसको दास सत्य वास्तव मधुर अनुरूप उसको अपना संगत प्रदान करते हैं। इसलिए दीक्षा वास्तव दीक्षा क्या है, वास्तव दिव्य ज्ञान क्या है? वास्तव दिव्य ज्ञान वो है जब जीव संपूर्ण अपना आत्म स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो जाए, जैसे महाराज अभी उदाहरण दे रहे थे कैसे बाबा महाराज के पास में कैसे दीक्षा मंत्र लेते हैं, दीक्षा मंत्र लेते ही वो अपराध दिव्य धाम श्री स्वतदीप का दर्शन कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर सूर्य उदय हो रहे हैं, कैसे शंकर आज ब्रह्मादि के हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर सब सचिनंदन गौर हरि को लेकर जय ध्वनि दे रहे हैं, संपूर्ण रूप में दीप अपराध जो दीप माया जो धाम को सब दर्शन कर रहे हैं, सबके सब दर्शन कर रहे हैं। इसलिए दीक्षा उसे कहते हैं जब वास्तव रूप में जीव को यह स्थिति आए तभी उसको दीक्षा कहते हैं। इसलिए उसी समय क्या अवस्था क्या होता है, सही काल कृष्ण करता है आत्मसम, उसी समय वो आत्मसम होता है। और एक महाराज बात बताए कहते सही जगह करता चितानंदमय अपराकृत देह कृष्ण चरण जगह। यहाँ पर बहुत सारी मेरा अंदर में भी बहुत बहुत शंका था, आज दूर हो गया है, मैं यही सोच रहा था एक शहर भी ज्यादा अपराकृत हो जाता है, आज एक बहुत गरीब शंका दूर हो गई। इसलिए महाराज प्रश्न उन्होंने अपना दुर्दिक पाप बताए, कुछ कुछ लोग उदाहरण से कहते ध्रुव, ध्रुव का शरीर सुनना पड़ा ही नहीं, उन्होंने इसी शरीर को बताया कि कार को सील पर चरण रख करके उन्होंने भगवत धाम को गए हैं, कभी इसी शरीर को द्वारा, लेकिन हम तो दिखता ही नहीं इसी शरीर को द्वारा है, लेकिन तब तो बात नहीं, हम लोग अपना जड़ दृष्टिकोण का विचार नहीं कर सकते। महाराज बहुत अच्छे उदाहरण दिया, अगर यही शरीर अगर अपना कृतत्व को प्राप्त करता है, चिन्मय को प्राप्त करता है, लेकिन ये शरीर तो इसमें दस्तर का पिता है, जायते खियते अपखियते बर्धते करते करते नष्ट हो जाता है, ये शरीर काफी पैसा पहुंचा के चलिए, क्योंकि ये शरीर पे कैसे अपना कृत कैसे हो सकता है, ये कैसे चिन्मय हो सकता है, ये शरीर नष्ट शरीर है। लेकिन शास्त्र ने बताया वैष्णव शरीर अपराकृत सदा, अपराकृत सदा
जे हिंसा निंदा करी
हां जे हिंदे हिंसा करी भगत बिना तो नासम हुआ सकारे सदा आगे सदा मौन करी रखने लगते हैं वैष्णव चरित्र वैष्णव का शरीर हां वो अपना जो सदा वो दिव्य है लेकिन अभी प्रश्न होता है अभी महाराज भगत जी से हमारा शरीर केस कर दिया शरीर बुढ़ावा हो गया और सारे झमरा ढीली पड़ गए क्या यही शरीर आपका चरित्र हो गया प्रश्न का यही तरीका प्रकृत और यही शरीर के द्वारा क्या हम जा करके प्रभु की दिव्य सेवा को किसी शरीर के द्वारा प्राप्त करेंगे ये तो शरीर नश्वर है जरा हो गया है ये शरीर के द्वारा नहीं ये शरीर से ही तत्वतः उसका जो आत्मस्वरूप है हाँ आत्मस्वरूप है अगर हम बोलेंगे या हम जो वैष्णव का अभी जिस स्वरूप को हम दर्शन कर रहे हैं ये स्वरूप क्या अनित है अपराध नित्य नहीं अनित ये स्वरूप जिस स्वरूप को दर्शन करते हैं कभी स्वरूप तो नित्य है लेकिन हम क्या ये जड़ चक्षु को द्वारा वैष्णव क्या दर्शन कर सकते हैं प्रश्न होता है हम जिस स्वरूप कह रहे हैं हम ये जड़ चक्षु को द्वारा क्या वैष्णव स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते हमारा इतना शक्ति नहीं क्योंकि वैष्णव का वास्तव स्वरूप को हम दर्शन कर सकते ये जड़ नेत्र को हम दर्शन भी नहीं कर सकते अपराध तो वस्तु है इसलिए तत्व तो हमारा उदाहरण दिया जैसे नारद ऋषि जब उन्होंने साधन भजन की साधन भजन करने पर उनको एक झलक दर्शन मिला जब उनको एक झलक दर्शन मिला प्रभु का एक झलक दर्शन करके जैसे उनको जैसे महीना की जैसे प्यास किसको हो मान किसने ला करके एक घूट उनको कोई शरबत पिला के मुंह से हटा ले ऐसे ही एक झलक दर्शन करते ही वो तो व्याकुल हो गए प्रभु का दर्शन करने के लोग हृदय व्यक्ति को उत्कट है जरूर था उसने आकाशवाणी भी अभिपक् को फसाया ना दुर्दर सब अहम पूजो बिना इसे अभिपक् को फसाया अभी तुम्हारा अंदर में कुछ कसा है कुछ दोष है इसी स्थिति में संपूर्ण रूप से दर्शन नहीं होता अभी साधन भजन करो फिर उसको बाद में दर्शन मिलेगा फिर इसे साधन भजन करते करते प्रलय आना है उसी समय उन्होंने नेपति पंच हो दिया वह शब्द आसान है उन्हें पंचवती शरीर को उन्होंने पतन हुआ छोड़ा फिर उनको प्रभु ने फिर ब्रह्मा जी का पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते नारद ऋषि रूप में वहां पर जन्म ग्रहण करके पुनः उनको फिर राधारण की आशीर्वाद से उनको फिर राधा जी की क्षत्रिया की प्राप्ति होती है राधा जी दर्शन की प्राप्ति होती है फिर उन्होंने दिव्य शरीर को पास को दर्शन दिए सर्वत्र उन्होंने भगवान का राम लीला को गान करते रहते हैं इसलिए वैष्णव का जो शरीर है हाँ यहाँ पर ये सब विचार है सुंदर समझ में विचार आया मैं कुछ ना बोला इसलिए आज की मेरे अंदर में बहुत श्रद्धा से मिल गया
আমি বুঝতে পারছি না যে তোমার এইরকম কিছু ধারণা ছিল
আমরা কেউ বুঝে নেই আমার অনেক
এইসব সাধু সন্ত गुरु महाराज जी का संग किया प्रभुपाद का उन्होंने संग वो धारा में आता है ये ग्रंथ में पढ़ने से लाखों से नहीं होगा
हरे कृष्ण मधुमंगल प्रभु वृंदावन प्रभु आपने ना संग संपर्क करें आपने भागवत की संबंधित